एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हमें अपने ही मन के अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं शंकर वेदांतम की किताब द हिडन ब्रेन, यानी कि अदृश्य मस्तिष्क।
हाँ, ये किताब उन छिपी हुई मतलब अनजानी दिमागी प्रक्रियाओं पर रोशनी डालती है जो हमारे फैसलों को, हमारे व्यवहार को और यहाँ तक कि पूरे समाज को अनजाने में ही एक शक्ल देती रहती हैं।
और ये विषय आज के जमाने में मुझे लगता है बहुत जरूरी हो गया है।
बिल्कुल, हम सब सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, सोच समझ कर ही फैसले लेते हैं, है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल यही लगता है।
पर क्या सच में ऐसा है? ये किताब यही दिखाती है कि कैसे हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा वो पर्दे के पीछे से काम करता है।
अच्छा।
और उसे समझना, खुद को जानने के लिए, अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर बड़े सामाजिक मुद्दों तक हर चीज़ पर असर डालता है।
तो चलिए पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, शंकर वेदांतम।
हाँ, शंकर वेदांतम कोई नया नाम नहीं है, जाने माने पत्रकार हैं, अवार्ड्स मिले हैं उन्हें, साइंस जर्नलिस्ट रहे हैं।
और अमेरिका में एनपीआर पर उनका पॉडकास्ट है हिडन ब्रेन, जो बहुत मशहूर है।
बिल्कुल, और उनका काम ही यही है, जैसे विज्ञान की मुश्किल बातें और हमारी रोज की जिंदगी, उनके बीच एक पुल बनाना।
हाँ, और उनकी ये खासियत है कि वो बड़े जटिल साइंटिफिक रिसर्च को, चाहे वो साइकोलॉजी हो, न्यूरोसाइंस हो या इकोनॉमिक्स,
हाँ,
उसे कहानियों के जरिए असल जिंदगी के उदाहरणों से जोड़कर समझाते हैं बहुत आसानी से।
और एक और बात, उनका भारत में जन्म हुआ, पढ़ाई अमेरिका में हुई, तो उनके नज़रिए में एक, वो कहते हैं, क्रॉस कल्चरल गहराई भी है।
हाँ, ये बात तो है।
वो चीज़ों को कई पहलुओं से देख पाते हैं और इसीलिए वो अदृश्य मस्तिष्क जैसे उलझे हुए विषय पर बात करने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हैं।
बिल्कुल। अच्छा, तो अब आते हैं किताब के मूल विचार पर, द हिडन ब्रेन, जैसा नाम ही बता रहा है।
हाँ, अदृश्य मस्तिष्क।
ये हमारे दिमाग के उस हिस्से की बात करती हैं जो हमारी जानकारी के बिना, मतलब हमारी चेतन सोच के दायरे से बाहर काम करता है।
हाँ, वेदांतम इसी को अदृश्य मस्तिष्क कहते हैं। ये एक तरह का ऑटो पायलट है जो हमारे बहुत सारे काम संभालता है, हमारी आदतें चलाता है
अच्छा।
और दुनिया को समझने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। और किताब का सबसे दिलचस्प सवाल शायद यही है कि हम जो खुद को इतना समझदार मानते हैं, अच्छे इरादे रखते हैं, वो बार बार इतने अतार्किक, इरैशनल फैसले क्यों लेते हैं?
हाँ, ये सवाल तो उठता है, क्यों हम अपने ही बनाए उसूलों के खिलाफ चले जाते हैं कभी कभी।
और अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो ना हम अपनी गलतियों से सीख पाएंगे, न ही समाज में जो ये पूर्वाग्रह है या जो ध्रुवीकरण है, इन समस्याओं से निपट पाएंगे।
तो ये अदृश्य मस्तिष्क एक तरह से दोधारी तलवार हुआ फिर।
हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये हमें बहुत तेजी से खतरे पहचानने में मदद करता है, पैटर्न समझने में, रोज के हजारों छोटे मोटे काम बिना सोचे समझे करने देता है।
अच्छा।
यह हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी था, विकास के लिए,
लेकिन
आज की जो ये कॉम्प्लेक्स दुनिया है, इसमें यही शॉर्टकट हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं।
मतलब पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं।
हाँ, पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं, हमें गुमराह कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए किताब एक बहुत ही जबरदस्त कहानी से शुरू होती है, मैन गल्च फायर की घटना।
मैन गल्च फायर, ये क्या था?
ये 1949 में अमेरिका के मोंटाना में हुआ था। कुछ बहुत बहादुर फायर फाइटर्स थे, स्मोक जंपर्स कहते थे उन्हें।
हाँ, सुना है।
वो जंगल की आग बुझाने उतरे पर अचानक हवा का रुख बदल गया और आग बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। वो एक ढलान पर फंस गए।
बाप रे, ये तो बहुत भयानक स्थिति है। फिर क्या किया उन्होंने?
ज्यादातर तो अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से भागने लगे, अपने भारी औजार वगैरह लेकर। लेकिन उनका जो लीडर था, वेग डॉज, हाँ, उसने कुछ ऐसा किया जो किसी किताब में नहीं लिखा था। वो शायद उसके अदृश्य मस्तिष्क से आया एक इंस्टिंक्ट था। उसने अपने आगे की सूखी घास में माचिस लगा दी।
क्या, आग से बचने के लिए आग लगा दी? ये तो अजीब है।
हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर उसका आइडिया ये था कि वो जली हुई जमीन का एक घेरा बना लेगा जहां आग दोबारा नहीं आ सकती और फिर उसी राख में लेट जाएगा। ये बिल्कुल ही गैर पारंपरिक तरीका था। उसके साथियों ने सोचा ये पागल हो गया है, वो भागते रहे।
और नतीजा?
नतीजा, डॉज बच गया और एक दो और लोग जो शायद उसकी बात मान गए, बाकी 13 लोग वो उस आग में मारे गए।
हे भगवान, ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती हैं।
बिल्कुल,
ये दिखाती है कि कैसे कभी कभी हमारी जो लॉजिकल सोच है वो सिस्टम वन नहीं, सिस्टम टू। वो धीमी पड़ जाती है?
हाँ, धीमी, विचारशील वाली।
और वो जो तेज ऑटोमेटिक गट फीलिंग वाला सिस्टम है, मतलब अदृश्य मस्तिष्क, वो जान बचा सकता है।
बिल्कुल सही। ये कहानी दिमाग की इन दो प्रणालियों का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक धीमी सोचने वाली लॉजिकल, दूसरी तेज ऑटोमेटिक भावनाओं वाली इंस्टिंक्ट वाली।
डॉज का फैसला उसी दूसरी प्रणाली से आया था।
हाँ, पर ये जरूरी नहीं कि ये तेज वाली प्रणाली हमेशा सही हो।
अच्छा,
यहीं पर वो अचेतन पूर्वाग्रह, अनकॉन्शियस बायस जैसी चीजें सामने आती हैं।
हाँ, पूर्वाग्रह बायस। किताब इस पर बहुत जोर देती है। ये काम कैसे करता है? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब अंदर से बुरे हैं?
नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। वेदांतम यही समझाते हैं कि पूर्वाग्रह अक्सर बुरे इरादे के निशानी नहीं है। ये तो दिमाग का दुनिया को फटाफट समझने का एक तरीका है, एक शॉर्टकट।
शॉर्टकट?
हाँ, हमारा दिमाग जानकारी को कैटेगरी में डालता है, पैटर्न ढूंढता है, हम कौन हैं, वो कौन हैं, इसमें फर्क करता है। ये हमें तेजी से फैसले लेने में मदद करते हैं।
लेकिन
लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि हम अनजाने में ही किसी ग्रुप के बारे में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर बनी बनाई राय पाल लेते हैं।
और ये इतने अंदर होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता।
बिल्कुल, तभी तो इन्हें अचेतन या अदृश्य कहते हैं। वो जो इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट है ना,
हाँ, IAT,
उसके जैसे प्रयोग दिखाते हैं कि जो लोग खुद को एकदम निष्पक्ष मानते हैं, उनके मन में भी गहरे लेवल पर किसी न किसी ग्रुप के लिए बायस हो सकता है।
बाप रे।
और ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है, इसका सीधा असर पड़ता है किसको नौकरी मिलती है, किसको अच्छा इलाज मिलता है, हम रोज किससे कैसे बात करते हैं।
तो फिर इसका इलाज क्या है? अगर ये दिखता ही नहीं तो इसे बदलेंगे कैसे?
ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, किताब यही कहती है कि सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से इसे खत्म करना बहुत मुश्किल है।
तो फिर
पहला कदम तो है जागरूकता, ये मानना कि हाँ, मेरे अंदर भी पूर्वाग्रह हो सकता है। ये बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, सिस्टम में बदलाव लाना। जैसे अगर नौकरी के इंटरव्यू में रिज्यूमे से नाम और पहचान छुपा दी जाए, ब्लाइंड रिज्यूमे जिसे कहते हैं, तो शायद सिलेक्शन ज्यादा फेयर हो।
हाँ, ये तो समझ आता है।
या मीटिंग में ये तय करना कि भाई सबको बोलने का बराबर मौका मिलेगा। मतलब अपनी कोशिशों के साथ साथ हमें ऐसे प्रोसेस बनाने होंगे जो इन अदृश्य पूर्वाग्रहों का असर कम कर सकें।
सही बात है। यानी सिर्फ खुद को बदलने से ज्यादा जरूरी है सिस्टम को, माहौल को बदलना। अच्छा, पूर्वाग्रह के अलावा किताब एक और चीज पर जोर देती है। हम दूसरों से कितना ज्यादा प्रभावित होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस, अनुरूपता।
हाँ, ये भी उसी अदृश्य मस्तिष्क का खेल है। हम सब सोशल जानवर है ना, दूसरों से जोड़ना चाहते हैं।
हाँ।
वो गिरगिट प्रभाव या कैमेलियन इफेक्ट सुने?
हाँ, थोड़ा थोड़ा।
हम अनजाने में ही जिससे बात कर रहे होते हैं, उसके हाव भाव, बैठने का तरीका, यहाँ तक कि बोलने का लहजा भी कॉपी करने लगते हैं। ये कनेक्शन बनाने का एक अनकॉन्शियस तरीका है।
अच्छा।
और इसका एक ज्यादा बड़ा रूप वो सोलोमन आश के प्रयोगों में दिखता है।
हाँ, वो लाइनों वाला प्रयोग है ना, जिसमें लोग साफ साफ गलत जवाब दे रहे थे।
बिल्कुल, उन प्रयोगों में लोगों को अलग अलग लंबाई की लाइनें दिखाई और पूछा कि कौन सी लाइन स्टैंडर्ड लाइन के बराबर है। जवाब आंखों के सामने था।
हाँ।
लेकिन जब ग्रुप के बाकी लोगों ने, जो असल में एक्सपेरिमेंट करने वालों के साथी थे, जानबूझकर गलत जवाब दिया, तो जो असली पार्टिसिपेंट था वो भी अक्सर वही गलत जवाब देने लगा।
कमाल है, सिर्फ इसलिए कि बाकी सब कह रहे हैं।
हाँ, ये दिखाता है कि ग्रुप से अलग होने का डर या ग्रुप के साथ चलने की इच्छा कितनी ताकतवर हो सकती है। हम सच जानते हुए भी झूठ का साथ दे सकते हैं।
इसका असर तो हमारी जिंदगी में हर जगह दिखता होगा, खासकर अपने यहाँ भारत में सामाजिक दबाव कितना ज्यादा होता है।
बिल्कुल, शादी कब करनी है, कौन सा करियर लेना है, त्योहार कैसे मनाने हैं, इन सब पर लोग क्या कहेंगे का कितना असर रहता है।
हाँ, बिल्कुल।
और ये सिर्फ समाज में नहीं, दफ्तरों में भी होता है, ग्रुप थिंक जिसे कहते हैं।
ग्रुप थिंक?
हाँ, जब टीम के लोग एक दूसरे से डिसएग्री करने से डरते हैं ताकि शांति बनी रहे, माहौल खराब ना हो, भले ही पूरी टीम गलत दिशा में जा रही हो।
ओह, तो ये अदृश्य मस्तिष्क हमें फिट होने के लिए इतना मजबूर करता है, कभी कभी सच की कीमत पर भी।
बिल्कुल।
एक और दिलचस्प पहलू जिस पर किताब बहुत करती है, वो है हमारी रैशनैलिटी का भ्रम, खासकर राजनीति या गहरे विश्वासों के मामले में।
हाँ, ये बहुत अहम है।
हम सोचते हैं कि हम फैक्ट्स के आधार पर राय बनाते हैं, पर क्या वाकई ऐसा होता है?
अक्सर नहीं। किताब यही बताती है कि हमारी राजनीतिक राय या किसी मुद्दे पर हमारा स्टैंड, वो अक्सर लॉजिक से कम और हमारी इमोशनल आइडेंटिटी, हमारे ग्रुप, हमारे कबीले के प्रति वफादारी से ज्यादा तय होता है।
कबीला?
हाँ, मतलब जिस ग्रुप से हम अपनी पहचान जोड़ते हैं, और फिर हम कन्फर्मेशन बायस के शिकार हो जाते हैं।
कन्फर्मेशन बायस मतलब?
मतलब हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते, पढ़ते और याद रखते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सपोर्ट करती हो।
अच्छा।
और जो जानकारी हमारी राय को चुनौती दे, उसे हम या तो इग्नोर कर देते हैं या उसमें नुक्स निकालने लगते हैं।
इसको मोटिवेटेड रीजनिंग भी कहते हैं शायद, कि हम तर्क का इस्तेमाल सच जानने के लिए नहीं बल्कि अपनी पसंद की बात को सही साबित करने के लिए करते हैं।
बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा है वो पहचाना हुआ पीड़ित प्रभाव, आइडेंटिफाइबल विक्टिम इफेक्ट।
हाँ, ये क्या है?
क्यों एक बच्चे की दुख भरी कहानी हमें लाखों लोगों की भुखमरी के आंकड़ों से ज्यादा हिला देती है?
ये बात तो है।
क्योंकि हमारा अदृश्य मस्तिष्क भावनाओं से ज्यादा जुड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट आंकड़ों से कम। हमारी सहानुभूति सेलेक्टिव होती है, हम तर्क से ज्यादा कहानी से हिलते हैं।
तो कुल मिलाकर ये किताब हमें बार बार यही याद दिला रही है कि भाई, हम उतने लॉजिकल हैं नहीं जितना हम खुद को समझते हैं।
हाँ।
हमारा ये अदृश्य मस्तिष्क पर्दे के पीछे से बहुत कुछ चला रहा है।
बिल्कुल। और अगर हम कुछ मुख्य बातें, मतलब की टेकअवेज निकालें, तो सबसे पहला और बड़ा संदेश यही है, अचेतन प्रक्रियाओं की प्रधानता। हमारे दिमाग का ज्यादातर काम ऑटो पायलट पे है, हमारी चेतना तो बस आइसबर्ग की टिप है। दूसरा, ये जो मानसिक शॉर्टकट है, ये जरूरी भी है और खतरनाक भी। ये हमें तेजी से दुनिया समझने में मदद करते हैं, पर यही पूर्वाग्रह और गलतियों की जड़ भी है। तीसरा, पूर्वाग्रह और सामाजिक प्रभाव, ये अदृश्य है लेकिन है हर जगह। हम सब इनसे प्रभावित होते हैं, माने या ना माने। इन्हें जानना, इनके बारे में जागरूक होना ही पहला कदम है।
और चौथा, तर्कसंगतता या रैशनैलिटी अक्सर एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, पर असल में भावनाएं, पहचान, अचेतन प्रक्रियाएं, वो पहली फैसला कर चुकी होती हैं। हमारा चेतन मन तो बाद में उसके लिए बहाने या तर्क गढ़ता है।
हाँ, वेदांतम इसे बहुत अच्छे से कहते हैं। मतलब भावार्थ ये है कि चेतना एक कहानीकार है जो अपनी ही कहानी पर विश्वास कर लेती है, भले ही वो गलत हो।
वाह, ये तो गहरी बात है।
हाँ, और एक और विचार जो मुझे बहुत जरूरी लगा, उसका भावार्थ कुछ ऐसा है, चुनौती पूर्वाग्रह को खत्म करना नहीं है, जो शायद नामुमकिन है, बल्कि ये समझना है कि ये काम कैसे करता है और इसके बुरे असर को कम करने के लिए सिस्टम बनाना है।
सिस्टम बनाना।
हाँ, ये हमें सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से आगे बढ़कर स्ट्रक्चरल समाधानों के बारे में सोचने को कहता है।
बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी चेतावनी, उसका मतलब कुछ ऐसा है, जब हम अपने अचेतन के प्रति सचेत नहीं होते तो हम सबसे ज्यादा उसी के गुलाम होते हैं।
बिल्कुल, यानी अनजान रहना ही सबसे बड़ा खतरा है।
तो मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख यही है, बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी।
हाँ।
ये मानना कि भाई, मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, मेरे विचारों पर मेरे इस अदृश्य दिमाग का गहरा असर है, और मुझे लगातार अपने अंदाजों पर, अपने गट फीलिंग पर सवाल उठाने की जरूरत है।
और मेरे लिए शायद सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि कैसे हमारी भावनाएं और हमारा सोशल कनेक्शन, वो हमारे फैसलों पर इतने हावी होते हैं, लॉजिकल सोच पर भी।
हाँ,
ये याद दिलाता है कि दूसरों को समझने के लिए सिर्फ उनके तर्क सुनना काफी नहीं, उनकी भावनाओं को, उनकी ग्रुप आइडेंटिटी को समझना भी जरूरी है।
सही बात। तो सुनने वालों के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ।
खबर पर फौरन यकीन कर लें। तो क्या आप एक पल रुककर सोच सकते हैं, कहीं इसमें मेरे अदृश्य मस्तिष्क का हाथ तो नहीं?
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।